ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा किसकी सभा में बैठे हैं, किनको मुरली सुना रहे हैं, बाबा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं, जो निमित्त टीचर्स बने हैं और जो गद्दी पर बैठ करके योग कराते हैं। कई बारी बाबा कहते हैं जरूरी नहीं है कि कोई सामने बैठ करके ही योग कराए तो ही योग लगे, या तो लाल बत्ती हो तो ही योग लगे। कलम हॉल में बैठे थे लेकिन ध्यान नहीं गया कि लाल बत्ती नहीं है, लेकिन आज भाई ने बताया तो ध्यान पर आया कि सफेद लाइट में ही योग कर रहे हैं। तो बाबा हमें कोई भी बात पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते हैं, कहां पर भी कैसे भी योग कर सकते हो। लेकिन आज बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया है कि गद्दी पर बैठे बुद्धि इधर उधर ना भटके। अगर आप समझते हो आपकी अवस्था ठीक नहीं है और योग कराने के लिए कहते हैं तो उस समय आप बता सकते हो, मतलब इतनी अपने अंदर ऑनेस्टी हो जो हम बताएं कि हमारे से अच्छी तरह से योग नहीं होगा तो हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तो कैसे समझते हैं बस गद्दी पर बैठ करके दृष्टि दे देना योग लग जाएगा, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। तो बुद्धि पर कितना ध्यान देना पड़ता है कि एक बाबा की ही याद रहे, बुद्धि कहीं और भटके नहीं। आज की मुरली 2 मार्च की साकार मुरली। मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ, खुद भी करो और दूसरों को भी कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। मुरली सुनते समय भी बुद्धि एक टिक रहे, न सिर्फ योग कराने के समय लेकिन बुद्धि मुरली सुनते समय भी। तो बाबा जो कह रहे हैं बुद्धि में अच्छी तरह से धारण होगा। प्रश्न, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो क्या होता है, सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यही बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं। योग में बैठते ही बाबा से दृष्टि लेकर के फिर औरों को दृष्टि देना। लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं, योग कराते समय एक बाप की ही याद रहे, जो औरों को भी कशिश हो, अपनी बुद्धि एक टिक होगी तो फिर दूसरों को भी वो कशिश दे सकेंगे। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे भी रह नहीं सकेंगे। तो पहले तो यह ख्याल करना है, मैं जो उस माशुक बाबा का आशिक हूं उसकी याद में बैठा हूं। हर एक ऐसे अपने से पूछे, घड़ी घड़ी अंदर चेकिंग चलती रहे कि बाबा की याद है या बुद्धि कहीं और भागती है। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देहभान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं डिस सर्विस करने बैठे हैं। यह बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, तो क्या होगा? नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वो मदद क्या करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं, मैं पुण्य का काम कर रही हूं। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे। योग में बैठते हैं आत्मा को पावन बनाने के लिए, सदगति में जाने के लिए, लेकिन अगर बुद्धि ठीक नहीं रहती है तो और ही दुर्गति को पाते हैं और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। जो बैठते हैं जो बिठाते हैं दोनों पर जिम्मेवारी रहती है कि गद्दी पर बैठने वाला बुद्धि एक टिक हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं और ब्रह्मा बाबा वो भी तो सबको जानते हैं ना। शिव बाबा तो सबको जानते हैं या बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है। ऐसे नहीं कि वो तो कोई देखता नहीं है, इनका बुद्धि योग भटकता रहता है, यह क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो, शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। शिव बाबा से वर्षा सबको मिलता है, सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे ही निमित्त बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने। बाबा कहते हैं हे आत्माएं मामे कम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो हो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट्स अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, हर एक अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे वा नहीं। टीचर भी जानते हैं और अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं तो वह भी जानते हैं। ऐसे नहीं है कि उनको तो कुछ मालूम नहीं है, हर एक को मालूम पड़ता रहता है। जानते हैं कि यहां अगर कोई कहते हैं हमको निष्ठा में योग में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है, तो बाप का फरमान ही है मामेकम याद करो। तुम आशिक हो, आशिक क्या करते हैं? आशिक अपने माशूक को भूल जाते हैं। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। उनके तो सारी मेहनत ही है ब्रह्म में लीन होने की। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होंगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी है और कोई झूठे भी है। खुद निरंतर याद में रहे ये बड़ा मुश्किल है, सही बात है। निरंतर याद में रहना बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं, या बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहते हैं और फिर थोड़ा समय याद में रहता हूं फिर भूल जाता हूं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को भूल जाते हैं क्या? उसके अंदर ही बैठा है, कैसे भूलेंगे। लेकिन हम बच्चों को थोड़ी राहत देने के लिए हमको कहते हैं, हम भी भूल जाते हैं। लेकिन मैंने समझती हूं ब्रह्मा बाबा कभी शिव बाबा को भूले हैं। थोड़ा समय याद में रहता हूं फिर भूल जाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता है कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। वैसे तो वाणी से मालूम पड़ जाता है क्या किसने कहा, लेकिन अगर शिव बाबा नहीं है तो ब्रह्मा बाबा भी मुरली तो चला सकते हैं। यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूं। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो ब्रह्मा बाबा जब बैठते हैं दृष्टि देते हैं तो क्या अनुभव कराते हैं सभी को, एकदम सन्नाटा हो जाता है। जब बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। बहुतों को खींचते हैं, बाप है ना। कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। दूसरों को कहते रहे और खुद करे नहीं। याद में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। माला में फूल शिव बाबा निश्चित है, मेरू दाना मम्मा बाबा निश्चित है, और बाकी सब दाने कोई भी दाना फिक्स नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने लिए। बाबा माला तो बनाते थे, दाने को रखते थे आगे, लेकिन दूसरे दिन देखते थे ये दाना यहाँ पर फिट नहीं होता है, घड़ी घड़ी बदलते रहते थे, इसलिए माला बनाना ही छोड़ दिया। परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है, तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहां वहां चली जाती है, मैं यहां बैठने के लायक नहीं हूं। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं हमको बोला है तो हम बैठ जाए, लेकिन स्वयं बताए कि हम नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपे ही कोई भी आकर बैठे, कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते हैं परंतु याद में रहते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं। लेकिन यहां तो दोनों में तीखा जाना चाहिए, ज्ञान में भी और योग में भी। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी साजन के साथ सजनी उनके साथ साथ चले इसमें मेहनत है, नंबर वन लेने में मेहनत है। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासिया बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, जैसे देखो किसको याद किया बाबा ने, ज्ञान नहीं सुनाते थे लेकिन सबको बहुत ही खुश करते हैं। मधुबन में आते सब किसको याद करते हैं, ब्रह्मा भोजन इतना प्यार से मिलता है, कभी भी भंडारे में जाओ कुछ भी मांगो तुरंत देने के लिए तैयार थी हमारी बोली दादी। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं, तो वहां शिव बाबा की भंडारी है। शिव बाबा की भंडारी तो नंबर वन है। मुझे याद है जब अव्यक्त बाप दादा का दिन होता था तो उसी दिन भी दादी भंडारी में ही होती थी। तो एक बारी अव्यक्त बाप दादा ने फिर बोली दादी को यहाँ पर ऊपर बुलाया था शाबाश देने के लिए कि कभी भी यहाँ नहीं आती है बाबा के पास, सबको खुश करने के लिए भंडारी में ही रहती थी, लेकिन बाबा ने खास बुलाया था उसको शाबाशी देने के लिए। तो वहां शिव बाबा की भंडारी तो है नंबर वन, बहुतों के दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। तो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और साथ साथ यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण कैसे करेंगे? हड्डी सर्विस करनी चाहिए, तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहां से आया वहां वापस जाना है, नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं है। थोड़ा बहुत ज्ञान है समझ है लेकिन उस पर ठीक रीति से चले वो नहीं हो पाते हैं। देखो क्लास में कहां कहां मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम भी असल देवी देवता धर्म के हैं, कैसे भी धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, बाबा के पास तो सबको आना ही है। तो उन दिनों में तो थोड़े आए थे, अभी तो बहुत आ गए हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, हमने भी तो 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं वा नहीं वह तो देख लेंगे, क्योंकि सबके लिए सामने माया भी तो परीक्षा लेती है। कभी एकदम तेजी से आगे दौड़ते हैं, कभी फिर माया पीछे हटा देती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं और कोई ठहर नहीं सकेंगे। जो असुर ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी भी हिलेंगे नहीं। बाबा के पास आ गए, पूरा निश्चय बैठ गया, फिर यहां से जाने का कभी संकल्प नहीं आएगा। बाकी कोई न कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। दे अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है किस लिए? अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाबा के पास आए हैं, समझे हम बाबा का बने हैं, बाबा के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। बाबा कहते आप तो अपने कल्याण के लिए बाबा के बने हो। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर राजाई पाने के लिए माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई तो फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेना तो मुश्किल है। तो बाप कहते हैं ऐसा समझना भी कमजोरी है। अपने संकल्प पावरफुल रखेंगे तो सब कुछ सिद्ध हो जाते हैं। संकल्प ही कमजोरी का रखेंगे तो फिर किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। बाप कहते हैं ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की तो कायर हो बैठ जाते हैं। ऐसे फिर ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं, ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। न खुद लेते हैं न औरों को लेने देते हैं, तो परिणाम क्या होगा? बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की। किस बात की मेहनत की? अपनी आजादी के लिए। कितनी जफा कशी, कितना खींचा तान की, तब तो फॉरेनर से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है, वो तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं है कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब ही तो दुखी है। रावण की मत पर चलकर इतने दुखी हुए, तभी तो बाबा आकर के श्रीमत देते हैं फिर से सुखी बनाने के लिए। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। दुनिया में आज सबको दुखी दुख है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं, अब श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं, वे सब क्या हो गया? अपने धर्म को भूल गए हैं, देवता धर्म को ही भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है। कौन सी समझ मिलती है? बाबा आकर के हमें अपना ज्ञान देते हैं, साथ साथ सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है, सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। बल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं, अपने को ब्राह्मण कहलाते रहते हैं लेकिन फिर भी वो पवित्रता नहीं है। कहते हैं कि हम बीके हैं परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वही उच्च पद पा सकेंगे। विघन तो पढ़ेंगे, अमृत पीते पीते फिर जाकर विघन डालते हैं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, बाबा कहते हैं यहां पर भी होता रहता है, यहां हुआ है तभी तो शास्त्रों में गायन है। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघन डालते हैं, तो यह भी गायन है, उनका पद फिर क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार खाती हैं, कहती हैं कि बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, बाबा के लिए इतना प्यार है तो थोड़ा सा भी सहन करना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा माशुक तो बाबा है ना, मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ, वह खुशी में बहुत रहती है। बंधन में जो होते हैं उनको तड़प रहती है कि शिव बाबा का ही बन करके रहे। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी आप समान बनाते रहते हैं। बाबा अभी दूसरी टॉपिक पर जा रहे हैं। सबसे अच्छा चित्र कौन सा है जिसमें बहुत सारा ज्ञान है? बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। कई बारी बाबा कहते गोला का चित्र बहुत अच्छा है, कई बारी कहते त्रिमूर्ति का अच्छा है, आज बाबा ने सीढ़ी को उठाया है। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं, या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है, बच्चे की बुद्धि को टच किया तभी उसने ऐसा चित्र बनाया। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। सीढ़ी उतरने में धीरे धीरे उतरते उतरते 84 पौड़ियां लगी, और ऊपर जाने में बाबा ने अभी संगम युग पर हम बच्चों को लिफ्ट दी, एक सेकंड में ही ऊपर पहुंच जाते हैं। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तो यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है, बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। शांति से ही लिफ्ट में बैठ जाओ, बाबा से जो चाहिए वो ले लो, अपने घर पहुंच जाओ, फिर नीचे आ जाओ। सीढ़ी का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, क्या हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, तो बाबा क्या कहेंगे, संशय के संकल्प ले आते हो अपने लिए ही कि हमने तो 84 जन्म नहीं लिए हैं, तो बाबा कहते हैं अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, तो हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तो यही बुद्धि में याद रहे तो पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे, अपने कुल के हैं उनको तो पक्का निश्चय है कि सभी ऐसे धर्म वाले देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म लेने वाले हैं। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा ले लो, वर्षा लेकर के फिर स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। चित्र देख करके सारी कहानी याद आती है, हम कहां से अभी कहां पहुंच गए। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए, समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। बाबा कितना नया नया तरीका रोज बताते हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते भी हैं, तुम जाओ ही किसके पास समझाने जाओ। सभी यहां पर तो नहीं आएंगे इसलिए बच्चों को भी बाहर जाना पड़े। तो बाबा कहते भी हैं, तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ, वह मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दे, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, औरों को समझाने के लिए खुद का भी मनन चिंतन चलता है तो उसमें खुद की भी बुद्धि खुलती जाती है, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएगा। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं, कईयों पर फिर ग्रहचारी भी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते हैं कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती है। बुद्धि में आता ही नहीं है कि हमारे से सर्विस क्यों नहीं होती है। आत्मा के ऊपर ग्रहचारी है इसलिए सर्विस नहीं कर पाते हैं, नहीं तो निश्चय से बोल करके किसी को भी सुना सकते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है, आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुत का कल्याण होता है। बाबा को कहां पर सर्विस करने में मजा आता था? बाबा जाते थे वहां पर सर्विस करते थे, बहुत ही सेवा की थी वहां पर। बाबा बॉम्बे गए थे, बाबा को बॉम्बे में सर्विस करने का बहुत मजा आता था, बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहमदिल बनना चाहिए, रहमदिल बनना जो सबको बाबा का परिचय देवे। सर्विस पर लग जाना चाहिए, दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। ये दादी जानकी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, बाबा ने उनको कहा था। नाश्ता करने बैठ गई थी तो बाबा ने कहा, आपने किसी को ज्ञान सुनाया है जो नाश्ता करने बैठ गई? तो उस दिन से दादी ने फिर कान पकड़ा कि जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाया है तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। तो लंदन में तो 8 बजे क्लास पूरी हो जाती थी, दादी 9:30-10 बजे तक बैठी रहती थी, लोगों को मिलती रहती थी, ज्ञान सुनाती रहती थी। कईयों का तो प्रॉब्लम्स होता था इसलिए दादी के पास आते थे, कई ऐसे ही फिर नए लोग भी आते थे दादी को मिलने के लिए। तो दादी ने पक्का किया था जब तक किसी को सुनाया नहीं है तब तक नाश्ता नहीं करना है। आप समय नहीं बनाए हैं तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करो, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाए। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाए। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी दादी की विशेषता थी, यहाँ पर राजू भाई मुरली डिपार्टमेंट में हर साल कुछ न कुछ नया बनाते रहते थे, लिखत में भेजते रहते थे। तो दादी को जो भी हाथ में आता था बिना पढ़े नीचे नहीं रखती थी, पहले नजर करती थी, आराम से पढ़ती थी, पढ़ करके फिर हमको बुलाती थी, कहती थी ये देखो राजू भाई ने भेजा है कितना अच्छा है, फिर कहती आप समझ सकती हो, आप उसका ट्रांसलेशन कर सकती हो, और 2 वीक ही रहा होता है नए साल के लिए, फिर कहती है ये किताब तैयार करके इंग्लिश में सबको बांटनी है, तो रातों रात फिर ट्रांसलेशन करके भी करना पड़ता था। पहले पहले ब्लेसिंग्स की किताब निकलती थी, ब्लेसिंग्स की किताब निकलती थी, अभी एक बाप दादा की किताब निकलती थी। तो जो भी दादी के हाथ में आता था दादी समझती थी नहीं ये बहुत अच्छा है, कभी भी दादी के मुख से ये नहीं सुना कि ये अच्छा नहीं है। कोई भी लिटरेचर लेकर के आते थे, थोड़ा भी वो लीफलेट जैसा भी बनाते थे, दादी कहती थी बहुत अच्छा है। तो बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। दादी हर मैगजीन को पढ़ती थी जो भी आती थी, समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है, यह तो बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं बिगर टीचर के, टीचर समझाए तभी उन्हों को समझ में आए। तो यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो। बड़े भाइयों की बड़ी बहनों की कितनी सारी अनुभव की क्लासेस, अनुभव की कहानियां होती है, वो सुनकर के अभी भी रिफ्रेश होते रहते हैं, परंतु वे तो पढ़ते नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, तो आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने लिए हमारे पास फलाने को भेजो। अगर ऐसी मांगनी करते हैं बाबा क्या समझ बाबा क्या समझते हैं कि खुद इतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। बाबा को कहते हैं हमारे पास भाषण करने वाले भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए, ये देखा शुरू शुरू में सभी बड़ी दादियों को सब जगह पर बुलाते थे, फिर वहां पर ही रह जाते थे सेवा आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है, साथ साथ हड्डी सेवा करनी है। दूसरा देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान मनन शक्ति द्वारा, आजकल सब इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारा वजन भी न बढ़ जाए, इसके लिए डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पैदल करते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो हमारा स्पिरिचुअल रीति से भी बाबा कहते हैं हमारा आत्मा के ऊपर वजन न बढ़ जाए, उसके लिए मनन चिंतन चलता रहे। वरदान मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। सारा दिन में देखो हमारी आत्मा में बुद्धि में कितना सारा वेस्ट चलता है, तो ये सारा आत्मा के ऊपर भारीपन बढ़ता जाता है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेस्ट वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, व्यर्थ चिंतन करने से आत्मा का वजन बढ़ता है, वेट बढ़ता है। स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। इजी है, हर बात में फ्लेक्सिबल है, जो आया जैसा आया स्वीकार कर लिया तो समय नहीं जाता है। लेकिन डिबेट करने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसमें अपना टाइम एनर्जी वेस्ट जाता है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चित होगा, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह सब व्यर्थ चिंतन है। निश्चित बुद्धि निश्चित व कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। निश्चय बुद्धि निश्चित व कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओम शांति। थैंक यू। आई हैव टू गो, बट आई कैन स्पीक 2 मिनट्स। यू वांट टू अनाउंस समथिंग फर्स्ट?
ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच आज जस्सू बहन आए हैं। जस्सू बहन लंदन से हैं और जो इंग्लिश मुरलियां चलती है, खास हिंदी से इंग्लिश करना, चाहे साकार मुरली, चाहे अव्यक्त मुरली, और चाहे अव्यक्त इशारे या जो भी मधुबन से हिंदी में सबको मिलता है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जसू बहनी करती है, तो हम सब इनको करतल ध्वनि से इनका धन्यवाद करते हैं। मैं निवेदन करूंगी 5 मिनट अपना परिचय देवे, फिर उनको जाना भी है।
ओम शांति। वैसे हम ज्ञान तो लिया था 1975-76 से, इसलिए अभी जो 50 साल मनाया उसमें हमारी खास सेरेमनी भी की थी। बाकी ज्ञान में चलना शुरू किया ठीक रीति से 83 से, और 85 से हम सरेंडर हुए, तभी हम वहां पर लंदन में जो ओम निवास सेंटर है वहां पर रहते थे। ओम निवास में रहते रहते वहां पर दादी बाबा भवन में रहती थी, और हम कुमारियां सभी टेनिसन रोड ओम निवास में रहते थे। उस समय ग्लोबल हाउस नहीं था, लेकिन ये दो भवन ही थे, बाकी शक्ति भवन था, शांति भवन था, ऐसे छोटे छोटे भवन थे। लेकिन उन दिनों में जो दादी से पालना मिली थी, दादी के साथ अंग संग रह करके दादी ने जो सिखाया, वो जैसे आज भी हमको चला रही है। तो वहां पर हम जो बाबा कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना, तो वो शुरू शुरू के दिन याद आते हैं। तो दादी जब हम ज्ञान में आए, शुरू शुरू में दादी, उस समय हम सेंटर पर रहने के लिए सरेंडर नहीं हुए थे, तो हर फ्राइडे को दादी कुमारियों को बुलाती थी। दादी को अच्छा नहीं लगता था कि कुमारियां किसी बात में अटक जाए या कोई बात में फंसी रहे, हमेशा चाहती थी कि ये बच्ची भी बाबा का बन करके रहे। तो दादी हमेशा हमको बुलाती रहती थी। तो फ्राइडे इवनिंग को हम जाते थे टेनिसन रोड में रहने के लिए, सैटरडे हमारा क्लासेस चलता था, हमको कर्मयोग कराते थे, और उसके बाद फिर संडे बड़ी क्लास होती थी, उसमें हमारे मम्मी पापा घर से आते थे, फिर उसके बाद साथ घर चले जाते थे। तो वीकेंड्स को हमको बहुत अच्छी ऐसी पालना मिलती थी सेंटर पर, उसके बाद फिर सेंटर में रहने के लिए आए। तो दादी हमेशा यही ध्यान रखती थी कि कुमारियों के ऊपर किसी की नजर न जाए। उस दिन भी शायद नीचे किसी ने सुनाया था कि बाबा को हमेशा रहता था, तभी बाबा ने ये बोर्डिंग और ये किला भी ऊंचा ऊंचा बनाया था कि किसी के ऊपर भी किसी बाहर वाले की दृष्टि न जाए, किसी की इम्प्योर दृष्टि न जाए, इसलिए बाबा ने ऐसा बोर्डिंग स्कूल बनाया था, इतना ऊंचा किला बनाया था ताकि कुमारियों के ऊपर किसी की दृष्टि न जाए। तो दादी ने भी हमको ऐसे ही बचा करके रखा। पहली बारी जब हम मधुबन आए, तो हमको मम्मी ने सोचा था कि हम जाए लौकिक में इंडिया में देखे, क्योंकि ये पहली बारी आना था। लेकिन दादी ने कहा कि इनको तो कोई लौकिक जिम्मेवारी नहीं है, ये तो बाबा की ही रहे, तो यहाँ मधुबन में ही हम रहे थे। तो अभी मधुबन में हम सब जगह जाते हैं, तो वो दिन याद आते हैं कि पहले जब हम आए 2 महीना यहाँ पर रहे थे, तो उसमें मधुबन निवासियों के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध हो गया था। शिलू बहन को भी उसी समय हम मिले थे पहले। तो शिलू बहन की एक बात मुझे याद रहती है, अभी भी हम जब बाल में तेल लगाते हैं ना तो याद रहता है, हमारा बाल थोड़ा फिजी है, तो उसी दिन धुलाई किया था और तेल नहीं डाला था। तो शिलू बहन ने हमको बताया कि तेल डालो, थोड़ा बाल अच्छी तरह से रहेगा। तो तब से मुझे याद आता है, जब भी तेल लगाते हैं तो ब्रह्मा कुमारी इसका बाल कैसे होना चाहिए, मतलब जो भी शिक्षा ये शुरू शुरू में मिली है अभी वो याद रहती है, अभी काम में आ जाती है। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी सुनाएंगे, अभी हम ओम शांति करते हैं यहाँ से।
आप तीनों, तीन बहनें हैं, तीनों ही समर्पित हैं। अरुणा बहन से तो उस दिन आप मिले थे, जिन्होंने मुरली सुनाई थी, वो भी ऑक्सफोर्ड में रहती है, और आप जसू बहन आप ग्लोबल हाउस में रहते हैं, और तीसरी बहन वो गई क्या?
नहीं, गई वो अभी गई यहाँ से।
कहाँ है
वो? गई हॉस्पिटल।
अच्छा, तो तीसरी बहन क्या नाम है उनका?
निमू बहन
वो हॉन्स्लो, हॉन्स्लो कौन सा सेंटर? हॉन्स्लो सेंटर है जो लंदन में एयरपोर्ट के पास ही है, वो सेंटर संभालते हैं। तो तीनों बहनें बाबा की समर्पित बच्चियां हैं। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे। पांडव सभी मधुबन निवासी जो समर्पित भाई बहन है उनके लिए विशेष सूचना है, पांडव भवन के समर्पित और ट्रायल वाले भाई बहनों को आज मदुराई सेवा केंद्र की गोल्डन जुबली के निमित्त सौगात मिलेगी सवेरे 11 बजे मेडिटेशन हॉल में। तो सभी मधुबन निवासी समर्पित और ट्रायल वाले पहुंचेंगे 11 बजे मेडिटेशन हॉल में, जहां मदुराई सेवा केंद्र की गोल्डन जुबली के निमित्त सौगात दी जाएगी। और समर्पित भाई बहने कार्ड और ट्रायल वाले भाई बहने ट्रायल कार्ड भी अवश्य साथ ले आए। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद जो डबल विदेशी भाई बहने हैं वो बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम भी देंगे और साथ साथ कुछ सूचनाएं भी देंगे। ओम शांति।